नमस्कार, आप सुन रहे हैं नवभारत गोल्ड का स्पेशल पॉडकास्ट।
17 दिनों की कड़ी मशक्कत के बाद आखिरकार उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों तक बचाव टीम पहुंच गई। सिलक्यारा से बरकोट के बीच बनाई जा रही 4 किलोमीटर से अधिक लंबी सुरंग में मलबा धंसने से 41 श्रमिक फंस गए थे। तो कैसे मिली ये सफलता? श्रमिकों तक पहुंचने में इतना समय क्यों लगा? इस पर विस्तार से बात करते हैं वरिष्ठ पत्रकार अरुणेश पठानिया से। अरुणेश जी, इन श्रमिकों तक पहुंचने के लिए हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों तरह की खुदाई की जा रही थी, जिनमें कई बार रुकावटें और परेशानियां भी आई। आखिरकार सफलता मिली कैसे?
जी, मैं आपको बता दूं कि केवल 2 तरह की ड्रिलिंग नहीं हो रही थी, इसमें 5 तरह के प्लान पे काम चल रहा था। और जो वर्टिकल ड्रिलिंग थी उसे बहुत लेटेस्ट स्टेज में शुरू किया गया। जो सरकारी तंत्र था उसकी पूरा का पूरा जोर उसका हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग की ओर था, जिसके जो तीसरे या चौथे दिन शुरू हो गई थी। ये अमेरिकन ऑगर मशीन से की गई ड्रिलिंग थी और इस ड्रिलिंग से केवल 57 से 58 मीटर की दूरी पर हमें फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचा जा सकता था। ऑगर मशीन से पाइप पुश करके उनको निकाला जाना था, लेकिन जहां मलबा गिरा था वहां पे बहुत से लोहे के धातुएं थी जिससे ऑगर मशीन के ब्लेड टूट जा रहे थे बार बार। ऐसी स्थिति में बचाव दल को रेस्क्यू अभियान के लिए दूसरे ऑप्शन को भी तलाशना पड़ा, जिसमें वर्टिकल ड्रिलिंग दूसरा सबसे बेहतर ऑप्शन था। इसके अलावा जो टनल का दूसरा छोर था बड़कोट की ओर से, वहां से भी ड्रिलिंग शुरू कर दी गई थी। लेकिन माना जा रहा था कि सबसे आसान माध्यम जो है वो हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग का ही है, और हॉरिजॉन्टल ड्रिलिंग में बार बार आ रही बाधाओं के चलते इस पूरे के पूरे रेस्क्यू मिशन में देरी हो रही थी। आखिरकार ऑगर मशीन, ऑगर एक तरह का दांत वाला ब्लेड वाला सिस्टम होता है, जिस सिस्टम के टूट जाने के बाद आखिरी ऑप्शन जो बचा था रेस्क्यू अभियान मिशन के लिए वो था मैनुअल खुदाई। इसके लिए मध्य प्रदेश और बिहार से स्पेशलिस्ट मंगवाए गए, जिसे रैक माइनिंग बोलते हैं, यानी जिस तरह से चूहा खुदाई करता है। तो राइट माइनिंग के माध्यम से 2 दिन के भीतर 10 मीटर और पाइप फंसे हुए श्रमिकों तक पहुंचाया गया।
जी, ऑस्ट्रेलिया के माइक्रो टनलिंग एक्सपर्ट आर्नोल्ड डिक्स को भी यहां बुलाया गया था और उन्होंने ये बताया कि उनके जीवन का ये अब तक का सबसे मुश्किल सुरंग बचाव अभियान था। तो जैसा आप बता रहे हैं कि मलबे को भेदने में इतनी रुकावटें थी कि इतनी तरह की मेहनत करनी पड़ी तब सफलता मिली। तो उत्तरकाशी के इस इलाके में किस तरह के पहाड़ हैं? क्या यहाँ लैंडस्लाइड्स बहुत आम हैं? क्योंकि सुरंग का काम करने वाले मजदूरों ने कई बार शिकायतें की थी कि ऊपर से मलबा आ रहा है। तो क्या किसी तरह की अनदेखी की गई थी? कहाँ चूक हुई इस पूरे निर्माण के दौरान?
मैं आपको बता दूं कि जैसा हिमालय के पहाड़ होते हैं, वो नए पहाड़ हैं, नई पर्वत श्रृंखला है, तो इतने ठोस चट्टान वाले पहाड़ नहीं है यहाँ पे, और इन पहाड़ों पे सुरंग बनाना बेहद सरल भी नहीं है। और ये जो सुरंग है 4.5 किलोमीटर लंबी, इसमें ये पहली बार नहीं मलबा गिरा है, इससे पहले भी कई मामले रिपोर्ट हो चुके हैं जब जिस हिस्से में ये भारी मलबा गिरा उसी हिस्से में लगातार मलबा गिरता रहा है। उस मामले को रिपोर्ट किया जाता रहा। बचाव के तौर पर जो कंपनी थी उसकी उपचार करने में लगी थी, लेकिन वो उपचार कितना हुआ, कैसा हुआ, इसकी जानकारी तो विस्तृत जांच में पता लग पाएगी जब बाद में इस पूरे मामले की जांच होगी। फिलहाल रेस्क्यू अभियान को चलाना बेहद महत्वपूर्ण था क्योंकि 41 जिंदगी अंदर फंसी पड़ी थी, तो विस्तृत जांच का मामला तो बाद में आएगा, जिसमें बाद ही में पता चलेगा आखिरकार चूक किस किस स्तर पर कहां कहां हुई। रही बात इंटरनेशनल टनल एसोसिएशन के अध्यक्ष आर्नोल्ड डिक्स की, आर्नोल्ड डिक्स को 5वें दिन ही यहां सरकार ने बुला लिया था। डिक्स की ही पूरी की पूरी प्लानिंग थी कि किस तरीके से एक ही प्लान पे ना काम करते हुए 4-5 ऑप्शंस को रखा जाए, और उसी का नतीजा है कि हमें 4-5 ऑप्शन स्टार्ट करने के साथ साथ हमें पहले जो हमें प्रारंभिक फर्स्ट ऑप्शन था उसमें हमें सफलता मिल पाई।
अमूमन ऐसे जटिल निर्माण के वक्त किस तरह की सावधानियां बरती जाती हैं ताकि हादसा होने पर फंसे हुए लोगों को सुरक्षित निकाल सकें?
मैं आपको बता दूं कि पहाड़ों में या मैदानों में कहीं भी टनलिंग होती है तो उसके साथ जैसे जैसे मशीन मिट्टी की खुदाई करती है तो ह्यूम पाइप्स डाले जाते हैं। ये ह्यूम पाइप्स जो होते हैं चौकोर आकार के होते हैं और ये साथ में आगे बढ़ते हैं। अगर खुदा ना खास्ता मलबा गिरता है, तो मलबा जो है चाहे वो लोहा उसमें धातु लगी हो या कुछ भी हो, वो मलबा जब गिरेगा ह्यूम पाइप्स के ऊपर तो ह्यूम पाइप्स को डिस्ट्रॉय नहीं करता वो। इससे क्या होता है कि जो श्रमिक खुदाई कर रहे हैं वो तुरंत उनको प्रोटोकॉल समझाया जाता है, एसओपी होती है, वो तुरंत ह्यूम पाइप्स में घुस जाते हैं और वहीं से निकल के आते हैं। अगर इस टनल में ह्यूम पाइप्स होते तो मुझे लगता है कि 2-3 दिन के भीतर या 1 दिन में भी वो उस टनल के माध्यम से बाहर निकल आते। अब ये जांच का विषय है कि ह्यूम पाइप क्यों नहीं डाले गए, ह्यूम पाइप का होना बड़ा जरूरी था। अब वो ह्यूम पाइप तो पूरे के पूरी प्रक्रिया में नजर नहीं आया, ये जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि ऐसी लापरवाही किस तरह से और कैसे हुई।
क्या बड़ा सबक दे गया है ये हादसा हमें, क्योंकि पर्यावरणविद हिमालयी क्षेत्रों में ऐसे भारी भरकम निर्माण पर कई बार सवाल उठा चुके हैं, तो क्या अब वक्त आ गया है कि उनकी बातों पर गंभीरता से गौर किया जाए?
पर्यावरणविद जो होते हैं उनकी बातों पर गंभीरता से विचार तो किया ही जाना चाहिए, लेकिन हमारे सामने चुनौती ये है कि पहाड़ पे विकास भी करना है, तो पहाड़ पे विकास करना और पर्यावरण के बीच में संतुलन बिठाने को लेकर के जो एसओपी है, जो प्रोटोकॉल्स हैं, उनको हमें रिव्यू करना पड़ेगा। जिस तरीके से टनल्स बन रही हैं, उन टनल्स के जो मानक हैं, उन मानकों को दोबारा से देखना होगा और पर्यावरणविदों की बातों को सुनना होगा। इन्वायरमेंटलिस्ट जो भी बात कह रहे हैं वो पर्यावरण बचाने के साथ साथ एक सेफ पैसेज बनाने की बात कर रहे हैं, ताकि विकास भी हो सके और इन्वायरमेंट भी बच सके। इस पहलू पे हमें गंभीरता से सोचने की जरूरत है और ये बहुत बड़ा सबक देखेगा चिलकारा टनल, और इस टनल के बाद शायद नए सिरे से कानून पे, नियमों पे, प्रोटोकॉल्स पे, एसओपीज पे काम हो पाए।
जी, जब सभी श्रमिकों को पूरी तरह से बचा लिया जाएगा उसके बाद आगे की राह क्या है? क्या इस सुरंग का निर्माण यहीं जारी रहेगा या फिर एक्सपर्ट कोई वैकल्पिक रास्ता खोजने की बात कह रहे हैं और वो कह रहे हैं कि यहाँ पर बिल्कुल निर्माण अब आगे ना हो?
अभी ये कहना बहुत जल्दबाजी होगी कि निर्माण आगे नहीं होगा, क्योंकि 60-70% का काम पूरा हो चुका है और ये लगभग 32 मीटर का पैच है जिसको सैनिटाइज करना है, जिसका उपचार करना है, जिसको ठीक करना है। इस पैच का उपचार होने के अलावा बाकी किसी हिस्से में 4.5 किलोमीटर के हिस्से में कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। अगर नए एसओपीज के साथ कंपनी काम करती है और हिस्से को दुरुस्त कर लेती है तो मुझे लगता है कि इस टनल पे काम तो चलता रहेगा और ये टनल बनेगी जरूर। वैकल्पिक मार्ग पे बात कर पाना भी जल्दबाजी होगी, क्योंकि हैवी इन्वेस्टमेंट है और इसका सामरिक दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस सुरंग के बनने के बाद जो उत्तरकाशी में हमारी सुरक्षा बलों की तैनाती है, उनके लिए हैवी स्नोफॉल के दौरान भी उनके वाहन, उनका जो सामान है वो आसानी से ट्रेवल कर पाएगा। तो ऐसे में एक टनल बेहतर माध्यम है, लेकिन इसको और सुरक्षित बनाने के लिए हमें गंभीरता से सोचना होगा।
ये जो टनल बनाई जा रही थी इसके निर्माण का टारगेट क्या था और ये किन किन रास्तों पर रहने वाले लोगों को इससे फायदा होता अगर ये पूरी हो जाएगी?
ये सुरंग यमुनोत्री राजमार्ग पे बन रही थी और ये उत्तराखंड की चार धाम ऑल वेदर प्रोजेक्ट योजना जो है उसका एक इम्पोर्टेंट पार्ट है। हालांकि 2018 में इसका निर्माण स्वीकृत हुआ था और इसका लक्ष्य था 2022 लास्ट तक, लेकिन अपने निर्धारित लक्ष्य से ये लेट चल रही है। अब इसका नया टेंटेटिव लक्ष्य है दिसंबर 2024 तक, तो इस बीच ये सुरंग बनकर तैयार हो जाएगी तो क्षेत्र को बहुत फायदा होगा। इसके कई महत्वपूर्ण एस्पेक्ट्स हैं, जैसे ये लोकल लेवल पे लोगों को फायदा पहुंचाने के साथ साथ चार धाम के श्रद्धालुओं के लिए बहुत फायदेमंद है। स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्मी और अदर जो इम्पोर्टेंट पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं, जिनकी एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उत्तरकाशी में, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और लोकल लेवल पे जो स्थानीय लोग हैं उनको जो लगभग 1-1.5 घंटे का रास्ता था, इस टनल को बनने के बाद वो रास्ता महज 5 मिनट का हो जाएगा। ये इसकी इम्पोर्टेंस है।
जी, तो फिलहाल तो ये हादसा हमें सबक देता है कि अंधाधुंध निर्माण के बजाय पर्यावरण विदों की चेतावनियों और एक्सपर्ट्स की सलाह पर गौर करके ही आगे बढ़ा जाए। अरुणेश जी, शुक्रिया आपका।